मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 27 अगस्त 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। देखिए, सामान्यतया आप खुद अपने बारे में सोच करके देखिए कि आर्थिक वृद्धि की जगह हम आर्थिक विकास लिख देते हैं, आर्थिक विकास की जगह हम आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं बोलचाल में भी और लिखने में भी, क्योंकि हमें यह पर्यायवाची से मालूम पड़ते हैं। वृद्धि का मतलब भी विकास जैसा ही लगता है। हिंदी में दोनों अलग अलग शब्द हैं और साथ ही अंग्रेजी में भी दोनों अलग अलग हैं कि जब हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब हम कहते हैं आर्थिक विकास तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो वृद्धि जैसी बात दिखाई दे रही है कि भाई उसका विकास हो गया। वृद्धि जुड़ा हुआ है बढ़ोतरी शब्द से, यानी कि हां, उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो दिमाग में एक तरीके से व्यवहारिक जगत में इन शब्दों का प्रयोग करते करते कुछ इस तरह की बात बैठ गई है कि ये दोनों एक जैसे हैं। दोस्तों, ये दोनों एक जैसे नहीं है और इसलिए मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन में लिखते समय इन दोनों शब्दों के प्रयोग करने के सिद्धांत को, अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर ही उपयोग में लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि विकास की जगह आर्थिक शब्द का आप उपयोग करने लगे। तो आइए पहले इनके थोड़े से अंतर को हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम इनके मूलभूत अंतर को देखते हैं। एक बात ये मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था, वृद्धि और विकास, कभी विकास की जगह वृद्धि, कभी वृद्धि की जगह विकास, ये मालूम होते हुए भी कि दोनों में अंतर है। कभी मैं वृद्धि की जगह विकास को रख देता था, विकास की जगह वृद्धि को रख देता था, तो मुझे लगा कि इसका हल क्या है। तो दोस्तों, इसका फिर मैंने हल ढूंढा, जिसे आप एक किस्म का टोटका जैसा कह सकते हैं। जैसे आप बोलिए वृद्धि, तो आप देखिए कि जब आप वृद्धि बोलते हैं तो आपका मुंह थोड़ा ही खुलता है, और आप बोलिए विकास तो आप देखिए कि विकास से आपका मुंह ज्यादा खुल जाता है। या अंग्रेजी का शब्द ले लीजिए ग्रोथ, तो आप देखिए कि ग्रोथ में कम शब्द है और मुंह भी थोड़ा कम खुलता है। किसकी तुलना में? डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि डेवलपमेंट में शब्द भी ज्यादा है, अक्षर ज्यादा है सॉरी, और मुंह भी ज्यादा खुल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वृद्धि है वो छोटी चीज है क्योंकि थोड़ा मुंह खुल रहा है, और जो विकास है वो बड़ी चीज है यानी कि क्योंकि उस बड़ा मुंह खुल रहा है उसको बोलने में। बस यही कुल मिलाकर वृद्धि और विकास में अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आर्थिक वृद्धि है वो बेसिकली एक नैरो कॉन्सेप्ट है। किसकी तुलना में? डेवलपमेंट की तुलना में। ऐसा नहीं है कि वो नैरो कॉन्सेप्ट है यानी कि कोई निगेटिव वर्ड है, नॉट एट ऑल, कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। यानी कि जब हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि, इसका मतलब है कि हमारा जो सारा का सारा जो जोर है वो किस पर है। जब आप आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो क्या, यानी कि धन से संबंधित, तो हम जीडीपी की बात करेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 6% है, 7% है, कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे कि भैया प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो यह दिखाई देता है आर्थिक वृद्धि, राइट। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, देखिए यहां भी शब्द तो आर्थिक ही है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं है, आदमी की केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं है, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि दूसरी वो सारी स्थितियां हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए, यानी कि समाज में समान अधिकार सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग ऐसा है जिसे आप समाज के हाशिए पर डाल करके रखेंगे। आर्थिक विकास तो है ही है, राजनीतिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार सबके पास होने चाहिए, यहां तक कि जो सांस्कृतिक विकास है वो भी सबके समान रूप से होने चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सबको मिलाकर के आर्थिक विकास शब्द स्पष्ट होता है। जबकि आर्थिक वृद्धि में आप क्या देख रहे थे? केवल अर्थशास्त्र, लेकिन यहां आपके सामने समाज शास्त्र भी है, यहां आपके पास राजनीति शास्त्र भी है, और यहां आपके पास बकायदे सांस्कृतिक तत्व भी हैं। एक बात यहां मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, जो रेफरेंस के तौर पर आपको मालूम भी होना चाहिए, ये निबंध लिखने में भी आपके काम आ सकता है, अर्थशास्त्र में तो काम आएगा ही और दूसरे क्षेत्रों में भी काम आ सकता है। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना है, हमारे भारत के हैं और जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है। और एक थे जीन ड्रेजे, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने 1982 में दो किताबें लिखी थी। एक किताब आई थी इंडिया डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन और दूसरी आई थी इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। देखिए नाम है इंडिया, दो बिंदी लगा दीजिए, डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, और दूसरी किताब थी इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इसमें उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कही, कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि जो हमारे नागरिक हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नागरिकों की क्षमता को बढ़ा सकें, कैपेबिलिटी अप्रोच की धारणा। अब जब आप अपने नागरिकों की क्षमता को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको आय बहुत अच्छी दे दी जाए लेकिन सामाजिक रूप से वो उपेक्षित हों तो क्या उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो वहां से फिर ये ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात बहुत तेजी के साथ होने लगी। और इससे पहले भी एक नाम है, मेरी समझ से आपको और मालूम होना चाहिए, थोड़ा ही पहले 1980 के आसपास की बात है, अमर्त्य सेन, और एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं महबूब उल हक, इनका नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, महबूब उल हक। इन्होंने एक शब्द दिया था वास्तविक वृद्धि, रियल ग्रोथ। तो ये रियल ग्रोथ क्या है, उन्होंने कहा कि जो रियल ग्रोथ है वो मानवीय विकास की बात कहती है, यानी कि जो हमारे समाज का विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां धन की दृष्टि से तो बहुत हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन दूसरी दृष्टि में हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहां के लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, हमारे यहां के लोग बहुत ज्यादा अशिक्षित हैं। तो ये वास्तविक ग्रोथ नहीं है, ये मानवीय ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ आर्थिक ग्रोथ है। तो वहां उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रियल ग्रोथ का। तो जब से ये रियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट 1980 में आया, तो सच पूछे तो वहां से फिर ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होने लगी कि नहीं नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत हमें दूसरे तथ्यों को भी लेकर के चलना होगा, यानी यूं कह लीजिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो देखिए यहां एक बात आपके सामने बहुत स्पष्ट हो गई कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, उसकी जो धारणा है वो बहुत व्यापक है। अगर आप इस बेसिक को समझ लेते हैं, देखिए इसी को बेसिक कहा जाता है, यदि आप इसकी इस बेसिक को समझ लेते हैं तो देखिए इसी के आधार पर आप ढेर सारे दूसरे पॉइंट्स निकाल सकते हैं दोनों के लिए। आइए कोशिश करते हैं यहां। चलिए हम एक पॉइंट निकालते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मैं पूछूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दोनों में से किसको हासिल करना कठिन है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कठिन काम कौन सा है। तो देखिए चूंकि आपको धारणा मालूम है तो सीधी सी बात है कि जो व्यापक धारणा है इसको हासिल करना कठिन है। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको पाना कठिन है अपेक्षाकृत इकोनॉमिक ग्रोथ के, राइट। अब आप देखिए, चलिए हम और आगे सोचते हैं, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं बेसिक बता चुका हूं, क्योंकि मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स के मेल आते रहते हैं कि सर बेसिक किसको कहते हैं, जरा हमें समझा दीजिए कैसे हम बेसिक पकड़ें। तो यहां मैं आप यूं कह लीजिए कि इस टॉपिक के माध्यम से उसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक किसी समाज में आय में बहुत असमानता है, तो अब कोशिश होनी चाहिए कि आय में समानता हो, बेरोजगारी में कमी आए, गरीबी की समाप्ति हो, इनके बारे में ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि धन का समान वितरण होना चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, तो ये ग्रोथ का विषय है या डेवलपमेंट का विषय है। देखिए मैंने जानबूझकर के आपसे थोड़ा कठिन सवाल किया है, क्योंकि जब बेरोजगारी की बात आती है, जब गरीबी की बात आती है, जब आय के समानता की बात आती है, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी किससे जुड़े हुए हैं? अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है, यार ये तो आर्थिक वृद्धि की बात होगी। नहीं, ये मूलतः इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात इसलिए, जैसे मान लीजिए कि भारत, आप देखिए कि आपको अक्सर ऐसे आर्टिकल पढ़ने को मिल जाते हैं कि भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 60% से अधिक धन है, और हम जीडीपी, हमारी ग्रोथ क्या है, 6-8%। तो जीडीपी ग्रोथ की दृष्टि से तो हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आर्थिक वृद्धि हमारी खूब तेज है, लेकिन आय की समानता कम है, भारत में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, गरीबी भी बनी हुई है। तो ग्रोथ कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती, वो तो केवल अपने फास्ट मूवमेंट पर ध्यान देती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इन बातों पर भी ध्यान देगी। उसके लिए तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि कैसे, अगर आप बेसिक्स को समझ लेते हैं तो बड़े आराम से आप डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंतर को भी समझ लेते हैं। चलिए मैं फिर से एक प्रश्न पूछता हूं। हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इन दोनों को मेजर करना यानी कि नापना है, तो दोनों में से किसे नापना आसान होगा, किसको आप बड़े आराम से नाप सकते हैं, मतलब आंकड़ों में बता सकते हैं, प्रतिशत में बता सकते हैं कि हाँ ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत बढ़ा, ये इतने प्रतिशत घटा, किसको मापना आसान होगा? क्योंकि अब आप बेसिक को समझ चुके हैं तो आप फट से बता देंगे कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना आसान है, डेवलपमेंट को मापना आसान नहीं है। अब इसमें क्या है, जीडीपी आप माप लीजिए, पर कैपिटा इनकम माप लीजिए, कृषि में कितना विकास हुआ आप इसको माप लीजिए, कितना अनाज पैदा हुआ इसको माप लीजिए, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है आपके जीडीपी में, ये सारे माप लेते हैं ना, आपके पास बकायदे आंकड़े हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने चलेंगे तो पता लगेगा कि सामाजिक स्थिति क्या है, कैसे मापेंगे, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, कैसे मापेंगे, राजनीतिक अधिकारों की वास्तविक स्थिति क्या है, उसको कैसे मापेंगे, उसे मापना बहुत कठिन होगा। तो अब आप देखिए कि कैसे आप बेसिक्स को समझ चुकी बेसिक्स को आप समझ चुके हैं तो बड़े आराम से आपने इसका भी उत्तर दे दिया। और प्री में इसी तरह से तो आपको यूं कह लीजिए कि भ्रम में डालने की कोशिश होती है, घुमाने की कोशिश होती है, अब कैसे आप अपने आप को उससे निकाल पाते हैं, यही तो बेसिकली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का तरीका है और कमाल भी है। चलिए मैं एक प्रश्न और भी पूछता हूं। आप ये बताइए कि क्या आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव है? मुझे नहीं लगता है कि बात ज्यादा जटिल होगी। जैसे आर्थिक विकास नहीं हुआ है लेकिन क्या कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हुई है? तो आपको लगेगा कि हाँ कह सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर आर्थिक वृद्धि नहीं हुई है तो क्या आप कह देंगे कि आर्थिक विकास हो गया? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि का होना जरूरी है, नहीं तो लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या विकास। लेकिन यह है कि ठीक है, लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो आर्थिक विकास नहीं हुआ है, लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं है, लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन हम जीडीपी में 8% जा रहे हैं, 15% जा रहे हैं, तो आप कैसे आर्थिक वृद्धि हो गई? यानी कि आर्थिक विकास के बिना तो आर्थिक वृद्धि संभव है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। चलिए मैं लास्ट प्रश्न करता हूं, आप भी फिर थोड़े से झुंझलाने लगे होंगे कि ये क्या बार बार सर प्रश्न कर रहे हैं। अब मेरा आखिरी प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ठीक है, दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब मेरा प्रश्न है, दो तरह के देश हैं, विकसित देश और विकासशील देश, और विकासशील में आप अविकसित देश भी मान ले, ठीक है, चलिए अफ्रीका वगैरह के कुछ देश विकासशील भी नहीं है, जो बहुत पिछड़े हुए इनको मान लीजिए। तो अब मेरा प्रश्न आप सबसे यह है कि जो आर्थिक वृद्धि है वह किस देश, किस तरह के देश, मतलब अब चूंकि हम तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह के देशों की चिंता का विषय है, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है वह किन देशों की चिंता का विषय है, या किन देशों के केंद्र में है कि हमें आर्थिक वृद्धि हासिल करनी है, और किन देशों की चिंता या उनके केंद्र में यह है कि नहीं नहीं हमें आर्थिक विकास हासिल करना है। आप उत्तर देने की स्थिति में बिल्कुल है। अगर आपको तुरंत उत्तर नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सोचिए, दिमाग को सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्री में बिना सोचे आप आंसर नहीं दे सकेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि जो विकसित देश है उनके केंद्र में आर्थिक वृद्धि है, क्योंकि वहां सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियां उतनी बुरी नहीं है, वहां बकायदे वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारा देश भारत और दूसरे जो विकासशील और अविकसित देश हैं, उनको केवल आर्थिक वृद्धि की चिंता नहीं है, बल्कि उनको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत से काम करने हैं। और वैसे भी आप इससे पहले जान चुके हैं, आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो ऑलरेडी आर्थिक वृद्धि तो आर्थिक विकास में शामिल ही है। तो आप देखिए कि किस तरह से अगर आप बेसिक को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी आगे के जो पन्ने हैं, जो आगे के तथ्य हैं, अपने आप उलटते चले जाते हैं, अपने आप को बताते चले जाते हैं, आपके सामने पेश होते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही, अब इसे यहां समाप्त करते हैं। नमस्कार।